हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आग से बने हुए आदमियों को देखकर विक्रांत की सांसें अटक गई थीं, क्योंकि विक्रांत अब एक सामान्य इंसान बन चुका था। ये सब उसके लिए नया था और वो बहुत हैरान था, लेकिन हिम्मत के साथ उन लोगों के साथ चल रहा था। तारापरी बड़े ध्यान से विक्रांत की हर गतिविधि देख रही थी। भले ही विक्रांत के अंदर से राक्षस का अंश निकल गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं निकला है। तारा को अजीब सी घुटन हो रही थी। भले ही विक्रांत बिल्कुल सामान्य रूप से उन लोगों के साथ था, लेकिन तारा को बार बार लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है। तभी अचानक अमन ने कुछ मंत्र पढ़कर उन आग से बने आदमियों पर फूंकना शुरू कर दिया। अमन के मंत्रों में गजब की शक्ति थी और अमन के चेहरे का तेज सभी को दिखाई दे रहा था, और देखते ही देखते वे आदमी गायब होने लगे। ये देखकर तारा और करिश्मा जी हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा था कि इन आग वाले आदमियों से लड़ने में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अमन के एक मंत्र से ही वे आग से बने इंसान गायब हो गए थे। तारा बहुत खुश हुई। तभी करिश्मा जी अपने आप को रोक नहीं पाईं और बोली, अरे वाह बेटा, ये तुमने कैसे किया? आखिर ये सब कुछ क्या था? अमन मुस्कुराया और बोला, मॉम, आपका बेटा अब जिन महाराज बन गया है। अब उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आसानी से इस तरह की छोटी मोटी काली शक्तियों का मुकाबला कर सकता है, और मैं यहाँ खास तौर पर तारा को उस राक्षस के अंश से बचाने आया था। करिश्मा जी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुझे उस राक्षस के अंश के बारे में कैसे पता चला? अमन मुस्कुराते हुए तारा और करिश्मा जी की ओर देखते हुए बोला, मॉम, मुझे पता था कि ये राक्षस का अंश तारा को ढूंढते हुए जरूर आएगा। ये बात मुझे पहले से पता थी। इतना ही नहीं, दादा महाराज ने मुझे इस बारे में बताया था और साथ ही मुझे जल्दी से यहाँ भेज दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉम, आप और तारा उस राक्षस के अंश का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाएंगी। इसलिए दादा महाराज ने मुझे जल्द से जल्द यहाँ भेजा था, और आखिरकार मैं खुश हूँ कि मैं अपनी तारा को सुरक्षित उस राक्षस से बचा पाया हूँ। और मॉम, मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तारा को बचाने के साथ साथ मुझे मेरे पिताजी भी मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अमन की बातों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। तारा और करिश्मा जी अमन को गर्व भरी नजरों से देखने लगी, और तभी करिश्मा जी आगे बढ़कर अमन के सर पर हाथ रख दिया और बोली, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे, तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। तभी तारा ने अचानक अमन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी अचानक जमीन हिल गई, और उन आगमुंडी वाले आदमियों के गायब होते ही उन्होंने पाया कि वे एक घने जंगल में हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तारा और करिश्मा जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी तो वे आग से बनी दीवारों के बीच थे, फिर अचानक वे इस जंगल में कैसे आ सकते हैं? वे लोग सोच ही रहे थे कि तभी अचानक अमन ने तारा का हाथ पकड़ लिया। तारा ने अमन की ओर देखते हुए कहा, अमन, हम यहाँ अचानक जंगल में कैसे आ गए हैं? करिश्मा जी ने भी घबराकर अमन से पूछा, बेटा, अचानक से हम जंगल में कैसे आ गए? अमन ने एक हाथ से तारा का हाथ और एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और विक्रांत की ओर मुस्कुराते हुए बोला, विक्रांत, हमारे ठीक पीछे रहना, ठीक है? और किसी भी चीज़ से डरना मत, क्योंकि जंगल में क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा जिन महाराज अमन को हो चुका था, इसलिए उसने दोनों का हाथ पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जिस जगह वे खड़े थे वहां से चारों दिशाएं अलग अलग जा रही थीं, लेकिन अमन जिस दिशा में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था उस ओर जाने लगा। धीरे धीरे वो एक तरफ अपनी माँ का हाथ और एक तरफ तारापरी का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वे रास्ते में जा रहे थे अचानक उन्हें अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर उनके आसपास हो। वे ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक कहीं से बहुत सारे जानवर आ गए, जिनमें शेर, चीता, भालू, गीदड़, हाथी, ज़ेब्रा, सभी तरह के जानवर शामिल थे। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर तारा, करिश्मा जी और अमन की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। विक्रांत तो बेहोश होते होते बचा था, क्योंकि वे सारे जानवर दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन अमन ने उनकी आंखों में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। जितने भी जानवर वहां मौजूद थे उनकी आंखें लाल थीं। इसका मतलब साफ था कि ये सभी जानवर किसी काली शक्ति के वश में हैं। वो काली शक्ति कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों के महागुरु जो काली पहाड़ी पर रहते थे वही थे। वे नहीं चाहते थे कि अमन और करिश्मा जी अमन के पिता तक पहुंचे। इसके लिए वे पूरी कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि जिन महाराज को उनका खोया हुआ बेटा वापस मिले, क्योंकि सफ़ेद जिन और काली शक्तियों के जिन की लड़ाई में वे अपना पूरा परिवार खो चुके थे, और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अमन के पिताजी का अपहरण किया था। अब उन्हें मौका मिल चुका था और वे किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। इसलिए वे अपनी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे और हर हाल में जीतना चाहते थे। अब अमन थोड़ा हैरान हो गया था। वहां पर इतने सारे आग से जले हुए शैतानों और अजीब इंसानों को देखकर अमन बिल्कुल नहीं चौंका था और आसानी से उसने एक मंत्र भूख कर उनका मुकाबला कर लिया था। लेकिन यहां तो कितने सारे जानवर थे और शायद सभी बेगुनाह थे, क्योंकि उन्हें वश में करके लाया गया था। अब अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निकले। वो अच्छी तरह जानता था कि ये जानवर निर्दोष हैं, इसलिए वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उन जानवरों की आंखें पत्थर जैसी हो रखी थीं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने उन्हें अपने वश में किया हुआ था, लेकिन उन्हें इतना खूंखार बनाया गया था सिर्फ हम लोगों की जान लेने के लिए। तभी अमन ने तारा और करिश्मा जी को चुप रहने का इशारा किया और कहा, आप में से कोई भी किसी तरह की आवाज नहीं निकालेगा और बिल्कुल खामोशी से मेरे साथ खड़े रहिए। तभी अमन ने उन जानवरों की ओर घूरना शुरू कर दिया, लेकिन अमन के घूरने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे वे और खूंखार तरीके से अमन तारा परी और करिश्मा जी की ओर बढ़ने लगे। तभी अमन ने तारा और करिश्मा जी को एक जगह खड़ा करके खुद उनके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि वो अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए अमन खुद उनके सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो चुका था। करिश्मा जी अपने बेटे की बहादुरी देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। उन्हें इस वक्त किसी तरह का कोई डर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जानवर उन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बहू परी है और उनका बेटा अब जिन महाराज बन चुका है, तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनके बच्चों पर कोई आंच नहीं आएगी, इसलिए वे काफी हद तक बेफिक्र थीं। तभी तारा ने करिश्मा जी के कान में कुछ कहा, क्योंकि तारा समझ चुकी थी कि जानवरों से इस तरह से बचना आसान नहीं होगा, ना अमन के लिए और ना ही किसी और के लिए। इसके लिए तारा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। तारा अच्छी तरह जानती थी कि जंगली जानवरों को अपने वश में करके उन्हें कैसे वापस सामान्य किया जा सकता है, इसलिए तारा ने अचानक अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करके एक जादुई बांसुरी मंगवा ली। अमन का ध्यान जानवरों की तरफ था, तो वो नहीं जान पाया कि तारा के हाथ में इस वक्त जादुई बांसुरी है, और विक्रांत डर के मारे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानवरों के अलावा किसी और की तरफ देख नहीं पा रहा था।
करिश्मा जी विक्रांत की ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई थीं, तो इस वजह से विक्रांत तारा परी को नहीं देख पा रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर तारा ने एक जादुई बांसुरी मंगवा ली और फिर करिश्मा जी के हाथ में देकर सब कुछ समझा दिया। वहीं अमन सोच रहा था कि वो इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि वो चाहता तो एक झटके में सभी जानवरों की जान ले सकता था, लेकिन वो इन निर्दोष जानवरों की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो इस वक्त सोच में पड़ गया था। लेकिन तभी अचानक करिश्मा जी अमन से कहने लगी, अमन बेटा ये बांसुरी लो और तारा को दे दो। अगर तारा इस बांसुरी को बजाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जानवर जिसके भी वश में होंगे वे उस वश से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही अमन ने ये सुना वो हैरान हो गया और अपनी मॉम से थोड़ा सा खींचते हुए बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तब करिश्मा जी अमन से कहने लगी, बेटा मैं तेरी माँ हूँ और मैं जो कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, तो जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही कर। ऐसा कहकर उन्होंने अमन को चुप कर दिया। उसके बाद अमन ने अपनी माँ से किसी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा। तभी तारा ने मुस्कुराकर करिश्मा जी की ओर देखा, मानो वो उन्हें कहना चाह रही हूँ कि वाह आपने किस तरह से बात को संभाला है। वहीं करिश्मा जी भी अजीब तरीके से तारा परी की ओर मुस्कुराने लगी, मानो वे कहना चाह रही हूँ कि देखा तुमने मैं कितनी समझदार हूँ। तारा परी करिश्मा जी की हरकत पर मन ही मन में मुस्कुरा रही थी और फिर अमन ने अपनी माँ के कहने अनुसार तारा परी के हाथ में वो बांसुरी देते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मॉम क्या करना चाहती हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि तुम्हारे बांसुरी बजाने से ये सभी जानवर ठीक हो सकते हैं तो वाकई ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ऐसा कहकर अमन ने वो बांसुरी तारा परी के हाथ में दे दी। वो बांसुरी तो तारा परी की ही थी, उसने सिर्फ करिश्मा जी के हाथों से बांसुरी अपने पास तक बुलाई थी ताकि अमन को उस पर किसी तरह का शक ना हो कि उसकी बीवी आखिरकार कौन है। तारा ने जल्दी से वो बांसुरी ले ली और फिर अपनी जादुई धुन से उसे बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही तारा परी ने बांसुरी बजाना शुरू किया, अमन की आंखें ऑटोमेटिक बंद होती चली गईं। विक्रांत रंधावा भी तारा परी की बांसुरी में खोसा गया था और करिश्मा जी भी गर्व भरी नजरों से अपनी बहू की ओर देखने लगी, और देखते ही देखते जितने भी जानवर थे उनकी आंखें भी अपने आप बंद होती चली गईं। जैसे ही तारा परी ने देखा कि सभी जानवरों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो उसने मौका पाकर जल्दी से जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके उन सभी जानवरों को एक एक करके वहां से गायब कर दिया। जो जानवर जहां रहता था वहीं पहुंच गया अपने परिवार के साथ। बांसुरी की आवाज के कारण अमन तो पहले ही मंत्रमुग्ध हो गया था, तो वो ये नहीं देख पाया कि तारा परी ने पहले ही जानवरों वाली समस्या को खत्म कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली वे सब हैरान हो गए। पूरा रास्ता पूरी तरह से साफ था। जैसे ही अमन ने ये देखा वो हैरानी से तारा की ओर देखने लगा, जो अभी भी बांसुरी बजा रही थी। तारा को हालांकि इस बात का पता था कि जानवर अब गायब हो चुके हैं, लेकिन उसने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया था। उसका मानना था कि जब तक अमन उसे नहीं रोकेगा तब तक वो बांसुरी बजाएगी, क्योंकि उसने भी बांसुरी बजाते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थीं।